Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Aparadha Kshamarpana Stotram, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Varanasi Nathamana Sharanam Prapadye Shri Vishwanatham Sharanam Sachidanandarupaya Vishvotpatyadihetave
जन आपके पास जेरोक्स कॉपी है। प्रथम दो श्लोकों का उच्चारण एक साथ करेंगे। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम् मातृकुक्षो स्थितं मां विन्मोत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदा यद्यद्वै तत्र दुःख दुःखं व्यथयति नितराम् शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो बाल्ये दुःखातिरेको मललुलित वपु स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता स्यन्तवो मां दुहन्ति नाना रोगादिदुःखाद्रुहन परवश शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो।
भगवत भक्त जन इस प्रार्थना को जब आप पढ़ रहे हैं उतना ही समर्पण और प्रार्थना के साथ ही इसको पढ़े। प्रत्येक शब्द के पीछे प्रभु को स्मरण करें। यह केवल पाठ अथवा श्रवण न हो करके यह एक व्याकुलता पूर्वक क्षमा याचना हो, इस प्रकार से शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का पारायण करेंगे। शिव भगवत भक्त जन भगवत पाद आचार्य के जीवन आप सब जानते हैं। एक मनुष्य के दो मुख्य विभाग है जिसके द्वारा वो जीवन को सुंदर बना सकता है, उन्नति के शिखर पर वो चढ़ सकता है और साथ साथ खुद के जीवन में एक प्रसन्नता, एक प्रीति, एक स्नेह के द्वारा वो खुद आनंदित हो सकता है। इस जीवन में नारायण दो पक्ष बहुत ही प्रबल है और ये सबके पास है। कोई ऐसा कह नहीं सकता है कि मेरे पास नहीं है।
दो पक्ष ये है कि एक है बुद्धि पक्ष, द्वितीय है भाव पक्ष। नीरा बुद्धिमान केवल बुद्धि पक्ष को लेकर के कोई जीवन होता नहीं। अगर जीवन में केवल बौद्धिक ही प्रबल है, बुद्धि पक्ष को ही मुख्य रूप से स्वीकार किया, डेवलप किया, तो वो व्यक्ति जीवन के चाहे वो भौतिक सुख, भौतिक जो प्राप्ति है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। कर्म में कुशलता पूर्वक वो कर्म संपादन कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण खुद के कर्म को करवाने में वो सक्षम हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि वो अपने जीवन में प्रसन्नता को भी प्राप्त कर ले। भगवत भक्तजन बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि जीवन में प्रसन्नता भौतिकता के साथ नहीं है। ये हम जो सोचते हैं कि भौतिक समृद्धि सुख का आधार है, यह गलत है। जिनके जीवन में भाव पक्ष न हो, इमोशंस फैकल्टी अनडेवलप्ड हो, वो नारायण सुख सुविधा से तो वो घिरे रहेंगे, परंतु उनके जीवन में प्रसन्नता हो, वो प्रसन्नचित्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति विकास हो अथवा आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जैसे बौद्धिक विकास की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार भावनात्मक भाव पक्षों को भी विकास करना उतना ही जरूरी है। विकास शब्द का अर्थ है आपके पास वो तत्व मौजूद है, आप किसी एक को प्रोत्साहित करते हैं, एक को ही कल्चर करते हैं, डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं, तो नारायण दूसरा पक्ष बिल्कुल निस्तेज पड़ा रहता है। इसलिए जीवन में बौद्धिक पक्ष जितना उत्कर्ष को आप दे सकते दो, साथ साथ भाव पक्ष को भी देखो, क्योंकि भाव ऐसा एक जगत के साथ आपका साक्षात्कार करा देते हैं, मिला देते हैं, जहां नारायण बुद्धि बहुत दूर से ही हाथ उठा देती है और हृदय बिल्कुल समर्पित होकर के जीवन एक परम प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए भगवत भक्तजन भगवत पाद आचार्य शंकर के जीवन में हम ये दो पक्ष को एक अद्भुत समन्वय के रूप में पाते हैं। कई बार दार्शनिकों में, आधुनिक विचारकों में भगवत पाद आचार्य शंकर को लेकर के बहुत गलत फहमियां हैं। कुछ दिन पहले ही एक पुस्तक को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, जो अंतिम में जिनको मिला पुरस्कार, उन्होंने लिख दिया कि आचार्य शंकर जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का प्रतिपादन किया यह गलत है, और उन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा ब्रह्म सत्य जगत सत्य। आप उन लेखक को जानते हैं मणि भौमिक, और उनका ये पुस्तक का हमारे गुरुजी ने खंडन करके भेजा भी है कि भाई किस प्रकार से तुम इसको बिना पढ़े, उनका मूल जब हम लोगों ने भी पढ़ा पुस्तक बिल्कुल मूलानुगा नहीं है, ऊपर से कि उनके पास भावनात्मक कोई पक्ष नहीं है, बौद्धिक विकास के उत्कर्षता को वो प्राप्त किया, क्या क्या लिखा है, एक नोवेल प्राप्त एक विद्वान ऐसा लिख सकता है, बड़ा आश्चर्य। इसलिए भगवत भक्तजन जब तक आप व्यक्ति के समग्रता को नहीं पहचान लेते, नहीं जान लेते, तब तक किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके कोई भी कमेंट्स हो वो प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। जब इस समग्र दर्शन को देखते हैं, भगवत पाद आचार्य के कृतियों को हम अवलोकन करते हैं, ब्रह्म सूत्र से लेकर के उपनिषदों के गहन विचार उन्होंने रखा, किस प्रकार विमतों को समन्वय करता हुआ, विरुद्ध मतों को किस प्रकार जवाब देते हुए एक अद्भुत समन्वय पक्ष को उन्होंने प्रस्तुत किया, और ये देख करके नारायण हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाती कि भाई ये जो है केवल बौद्धिक विकास को ही किया। परंतु जब हम उनके ये स्तोत्रावली स्तुतियों को देखते हैं तब लगता है कि भाव पक्ष जो व्यक्तित्व के सुंदर करने का एक आवश्यक चीज है वो है भाव, वो भाव पक्ष भी भगवत पादाचार्य के कितना प्रबल। एक एक स्तुति को देखिए नारायण, कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसीलिए नारायण जो अद्वैत वेदांती होते हैं वो रसमय कथा कर नहीं सकते, ये हमारी गलत सोच है। अद्वैत और रसमय भक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए भगवत भक्तजन उनके पास ऐसा कोई भेद बुद्धि नहीं है, और जगत के सत्यता को जान करके इंद्रिय परवशता को समझ करके और विवशता को समझते हुए जब वो व्यक्ति किसी के पास कहता है वो स्वतः एक प्रार्थना का रूप ले लेती है। इसलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर के विरचित जो प्रकांड विद्वान के साथ साथ एक स्नेही है, एक प्रेमी है, और यथार्थ के ज्ञाता है, सत्य को जानता है, सत्य को वो देखते हैं। हमारी दृष्टि इतनी साफ नहीं है कि हम कोई भी चीज को देखे तो उसके गहराई तक हम पहुंच जाए। उपनिषदकार लिखते हैं सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्श भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म दर्शन करने की अभिलाषा चेष्टा करो, जो भगवत पाद आचार्य के जीवन में देखने को मिलता। सूक्ष्मता से वो सब चीज को निहार लेते थे और सत्यता को जान करके, यथार्थ को जान करके वो जीवन को कैसे एक प्रार्थनामय बनाने में कामयाब होते थे, उसी का निदर्शन है यह शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। चित्त कैसा द्रवित होने पर, नारायण मैं आज यही सोच रहा था, कितना द्रवित होने पर उस द्रवित चित्त से ये प्रार्थना निकल सकता है। कभी लगता है कि यहां आकर के बहुत बुद्धि बिल्कुल साइड, बिल्कुल कहीं और है, और यहां कैसे वो द्रवित चित्त से व्याकुल होकर के भगवान शंकर के समक्ष प्रार्थना करते हैं, और द्रवित चित्त से इस चित्त से उस परम सत्य स्वरूप किनके पास, परम सत्य स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा शिव, शिव शब्द का अर्थ है शिवम करोति, शिवम इति कल्याणम, जो कल्याण करता है। फिर शिव शब्द का अर्थ सिंह सयन धातु से भी निष्पन्न किया जा सकता है, जो सभी के हृदय में विराजमान है, सयन है, वो जो सुप्त रूप से हमारे प्रत्येक के हृदय में विराजमान जो अस्तित्व है, उनके पास वो अपने हृदय की द्रवित चित्त की प्रार्थना को निवेदन करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, और निवेदन भी क्या निवेदन, प्रार्थना भी किस प्रकार के प्रार्थना, हमारे जैसी प्रार्थना नहीं है, हमारे जैसे कोई मांग को लेकर के भिखारी की जैसा नहीं पहुंच रहे हैं। एक कृतज्ञता, जो करना था वो नहीं कर पाया। अब देखो एक महापुरुष जीवन भर इतना कुछ हमारे लिए देके गए, जो हम एक जीवन में क्या, हमको तो लगता है कि सत जीवन में मिल जाए तो शायद उनके दर्शनों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, विचारों को नहीं समझ सकते नारायण। और ऐसा एक दिव्य विभूति वो जगदीश्वर, जो जगत की ईश्वर है, प्रार्थना और क्षमा जाचना की है। क्षमा जाचना भी क्या कि देखो एक मनुष्य की जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म और मृत्यु, जन्म से उसकी जर्नी यात्रा शुरू है और मृत्यु में वो संपन्न समाप्त, ये जो दुखमय कष्टमय यात्रा, ये सुखद यात्रा नहीं है, बड़ा कष्टकर यात्रा है, उस यात्रा के जो भी उन्होंने समझा वो ईश्वर जगदीश्वर के पास निवेदन करते हैं। और इस स्तुति को पढ़ते पढ़ते तो मुझे एक भाव आता कि भाई जैसे वो लोटपोट खा रहे साष्टांग प्रणाम करके कि बस अब हमारी जो परम कर्तव्य था वो तो हमने किया नहीं, और जो ना करने से भी चलता ऐसा कर्म हमने कर लिया, परंतु परम आवश्यक था वो हमने किया नहीं। अब उनके जीवन को देख करके बताइए, वो व्यक्ति कह रहे कि जो मेरा कर्तव्य था, परम आवश्यक था, वो हमने किया नहीं, और व्यर्थ कामों में शायद हम अपने जीवन को गवा दिए, और उस भाव से वो ईश्वर के पास प्रार्थना निवेदन करते हैं। कि हे ईश्वर, अब तो आप ही है, मेरी जो अपराध है, मैं अपराध क्षन्तव्य, आप क्षमा करो। और हे शिव शिव शिव, जैसे बुद्धि को अथवा मन को अथवा व्यक्ति के जीवन को वो स्वयं बोल रहे हैं कि देखो शिव शिव शिव, जो हृदयस्थ है, प्रत्येक जीवात्मा में मौजूद है, हे शिव, हे महादेव, क्षन्तव्यो मे अपराध, मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रार्थना से नारायण व्यक्ति के जीवन में जो स्थूल वासना है,